नए मुहावरे की इबारत। हबीब तनवी के रंगमंच का मुहावरा इतना नया और अलग है कि वह उनकी निजी पहचान बन गया है, उनका हस्ताक्षर बन गया है। लेकिन इसका सबसे अधिक श्रेय उस मुहावरे की इबारत को जाता है जो आधी सदी की उनकी रंग यात्रा के दौरान विकसित हुई है। यह मुहावरा उतनी आसानी से नहीं गढ़ा गया जितना कि वह आमतौर पर समझा जाता है। निर्देशक के रूप में हबीब तनवीर की रंग यात्रा शतरंज के मुहरे शुरू हुई थी, जिसकी पहली प्रस्तुति उन्होंने निपटा के बैनर में दीनानाथ पाठक के साथ सन 1948 में की थी। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी शतरंज के खिलाड़ी का रूपांतर भी हबीब तनवीर ने किया था। यह उनकी इप्टा के दौर का पहला नाटक था। इससे पूर्व वे शांति दूत, कामगार शीर्षक से नुक्कड़ नाटक का लेखन निर्देशक कर चुके थे। इस पहले प्रदर्शन से हबीब तनवीर के आत्मविश्वास को जगा दिया। हैदराबाद में इसका प्रदर्शन और भी सफल रहा, क्योंकि वहां के दर्शक उनकी उर्दू जुबान को ज्यादा अच्छे तरीके से पकड़ सके। यह नाटक पूरी तरह यथार्थवादी शैली पर आधारित था और इस ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में दो नवाबों के मानसिक अयाशी पर गहरी चोट की गई थी, जो मोटे तौर पर संवादों के जरिए व्यक्त हुई थी। बम्बई छोड़कर दिल्ली आने के बाद हबीब तनवीर ने 1954 में नाटक फिर उठाया और उसकी जुबान लखनवी उर्दू कर दी। लखनवी उर्दू के जरिए नवाबों के तौर तरीके और उनके लखनवी अंदाज को पेश करने में खासी सुविधा हो गई और इसका असर अधिक कलात्मक हो गया। सन 1960 में हबीब तनवीर ने यह नाटक फिर उठाया और दिल्ली के अलावा अन्य नगरों में भी इसे प्रदर्शित किया। इसका प्रदर्शन मैंने जयपुर में देखा था, जिसमें हबीब तनवीर के अतिरिक्त मनमोहन कृष्ण, AK हंगल और सुषमा श्रेष्ठ भी अभिनय कर रहे थे। सथियों ने इस नाटक की मन सज्जा की थी। इस प्रदर्शन के बाद मेरे दिल दिमाग में आज भी ताजा है। हबीब तनवीर ने इस प्रस्तुति में लखनवी उर्दू का जो लहजा अभिनय में ढाला, वह दर्शकों को आकर्षित करने में पूरी तरह सफल रहा। मुझे आज भी जवान की वह नफासत याद है जो नाटक के नवाब झगड़े के दौरान भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन फिर भी हबीब तनवीर का यह मुहावरा उनके आज के मुहावरे से एकदम अलग था। यह उनका प्रारंभिक दौर कहा जा सकता है। अपने अगले दौर में हबीब तनवीर ने मुंशी प्रेमचंद की एक अन्य कहानी मोटे राम का सत्याग्रह के नाट्य रूपांतर का निर्देशन किया। लगभग 30 वर्षों के बाद सन 1988 में उन्होंने जब इस नाटक की पहली प्रस्तुति की, तब तक वे अपने मुहावरे पर पूरी पकड़ बना चुके थे। आगरा बाजार, मोर नाम दामाद, चरणदास और बहादुर कलारेन जैसे नाटकों के अतिरिक्त अनेक संस्कृत नाटकों और वरिष्ठ तथा मौलियर के नाटकों की अत्यंत सफल प्रस्तुतियों ने उन्हें भारतीय निर्देशकों की प्रथम पंक्ति में प्रतिष्ठित कर दिया था। दिलचस्प बात यह कि मोटे राम का सत्याग्रह उन्होंने सबसे पहले जननाट्य मंच के तत्वाधान में निर्देशित किया था। उस पहली प्रस्तुति में नया थिएटर के सुपरिचित और हबीब तनवीर के मुहावरे की पूरी तरह आत्मसात कर चुके कलाकार नहीं थे। वस्तुतः हबीब तनवीर ने एक लंबे अरसे के बाद नया थिएटर के अतिरिक्त किसी दूसरी संस्था के लिए किसी नाटक का निर्देशन किया था। मुंशी प्रेमचंद की उस कहानी का रूपांतरण मूलतः सफदर हाशमी ने किया था। वे सैनुक्कड़ नाटक के रूप में पेश करना चाहते थे, लेकिन हबीब तनवीर ने उस रूपांतर को संशोधित करके भरे पूरे नाटक का स्वरूप दे दिया। उसकी कथा का मूल स्वर व्यंग्यात्मक है, किंतु वर्तमान राजनीति और सामाजिक छंद पर किया गया कटाक्ष बहुत गहरा है। गांधी जी के सत्याग्रह की आड़ लेकर छोटे छोटे स्वार्थों की पूर्ति और यशलिप्सा के कारण छुटभैये लोगों को कुत्सित और घिनौनी मनोवृत्ति को अनेक मनोरंजक प्रसंगों के जरिए उनकी आंतरिक दुर्बलताओं का पर्दाफाश किया गया है। मोटे राम एक अत्यंत लोभीय पेटू ब्राह्मण है जो किन्हीं अपेक्षाओं को लेकर अनशन में बैठ जाता है, लेकिन पेट की भूख उसे बर्दाश्त नहीं होती। वह अपने सत्याग्रह के छंद को बनाए रखने के लिए ऐसी कारगुजारियां करता है जो अत्यंत हास्यास्पद है। जननाट्य मंच के तत्वाधान में इसकी अनेकानेक सफल प्रस्तुतियां हुई, लेकिन 3 वर्ष बाद एक जानलेवा हमले में सफदर हाशमी की मृत्यु के बाद हबीब तनवीर ने इसके प्रदर्शन का पूरा दायित्व ओढ़ लिया। सन 1991 के बाद से उसके अनेकानेक प्रदर्शन नया थिएटर के बैनर तले हो चुके हैं। अनेक प्रदर्शनों में हबीब तनवीर ने इसमें विभिन्न भूमिकाएं की। यह भी सच है कि जननाट्य मंच और नया थिएटर की अलग अलग प्रस्तुतियों में इसके आस्वाद में भी अंतर आया। कथा का वह मारक कटाक्ष हास्य की अतिरंजित स्थितियों में खोने सा लगा, एक तीखा व्यंग मनोरंजक हास्य में बदल गया। उसके बाद आगरा बाजार से लेकर चरणदास चोर की यात्रा में हबीब तनवीर ने जिस मुहावरे को पकड़ा था, उसका जिक्र पहले पिछले अध्याय में विस्तार से किया जा चुका है। इन दोनों प्रस्तुतियों के बीच जिस नाटक का उल्लेख किया जाना जरूरी सा लगता है, वह है मेलियर के नाटक का द बोर्जुआ जेंटलमैन का रूपांतर, जो सबसे पहले उन्होंने मिर्जा शोहरत बेग के शीर्षक से सन 1955 में प्रस्तुत किया था। इस रूपांतर में उन्होंने मौलियर के इस फ्रांसीसी नाटक को, जो लगभग पूरे एक सदी पूर्व लिखा गया था, पूरी तरह आज के भारतीय परिवेश में ढाल दिया। इस नाटक का आलेख दो स्तरों से गुजरा है। संशोधित आलेख में कुछ और नई बातें पैदा हो गई हैं जो पहले आलेख में नहीं थी। संशोधित आलेख का कथानक छत्तीसगढ़ की एक बनिया पर केंद्रित है, जो बहुत अधिक धन अर्जित करने के बाद समाज के विशिष्ट लोगों में जगह बनाने के इरादे से अपनी जमीन छोड़ देता है। वह आत्मतुष्टि के लिए बनावटी रूप धारण करता है, अपने वेशभूषा, भाषा, भूषा और व्यवहार को तस देता है और अंग्रेजी सूटपन के बनावटी लहजे में अंग्रेजी और हिंदी बोलने की कोशिश करता है। शहर का एक चलता पुर्जा उस बनिया की इस कमजोरी का फायदा उठाकर उसे लाला शरत राय के रूप में प्रतिष्ठित करने का झांसा देता है और एक चालू औरत को किसी प्रदेश की राजकुमारी बताकर उसकी शादी करवा देता है। अंत में लौट के बुद्धि घर को आए कि तर्ज में वह पश्चाताप करता है। अपना निजी मुहावरा गढ़ने में इस नाटक के जरिए भी उन्होंने काफ़ी कुछ हासिल किया। इस नाटक की जबान बदलने के साथ कलाकारों के अभिनय में भरपूर सहजता आई। मिर्जा शरत बेग में से लाला शरत राय तक की यात्रा का मकसद भी यही था। अलकनंदन से हुई एक लंबी बातचीत में इस संबंध में हबीब तनवीर ने कहा, लाला शरत राय का पहले मिर्जा शरत बेग नाम था। उसमें मैंने हैदराबादी जुबान लिखी थी कि यह हैदराबादी छोड़ के ठेठ उर्दू बोलने लगते हैं और वहाँ के जागीरदारी निज़ाम को मुतासिर होकर वह चाहते हैं कि वहाँ की कहलाएँ रईस जैसा मुनासिब था उस वक्त। मैंने पहला प्रोडक्शन किया था चाहे मैं मिलिया में और बाद में दोहराया, तब भी यही वर्जन था और बाद में उसको लाला शोहरत राय करके छत्तीसगढ़ का कोई बनिया जो कि शहरी बनना चाहता है और खड़ी बोली बोलना चाहता है और तमाम संस्कार बदल रहा है तो उसमें उर्दू का मैंने प्रयोग किया है, छत्तीसगढ़ी और उर्दू छत्तीसगढ़ी। उसके नौकर चाकर बीवी बच्ची नौकरानी और उसका लवर और लवर का नौकर ये सब छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। लाला शोहरत राय बोल लगे हैं हिंदी बोलने में, कभी कभी छत्तीसगढ़ी घर में बोलते हैं। छत्तीसगढ़ी जुबान के जरिए नाटक बहुत दोबारा मंच पर उतरा तो इसका असर कुछ और ही था। इस प्रस्तुति में एक ताजगी नया अंदाज आ गया। भाषा के माध्यम से रंगमंची मुहावरों को पहनावा सरदार बनाने में उन्होंने खासी कामयाबी मिली। वह करने की कोई आवश्यकता नहीं कि यह कथानक आज भी भारतीय समाज के उन नवढनाढ़ लोगों पर गहरा व्यंग करता है जो अपनी जमीन छोड़कर समाज में ऊंचा स्थान बनाने के लिए दूसरे देशों या उनकी संस्कृति की नकल करते हैं। मौलियर का विश्व प्रसिद्ध नाटक हबीब तनवीर के मुहावरे में ढलकर समसामयिक भारतीय जीवन की विडंबनाओं को आह्लादकारी किंतु तीखे व्यंग्यात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। छत्तीसगढ़ी भाषा में नहीं कि मैं वहीं के कलाकारों के साथ की गई इस प्रस्तुति का वार दर्शक के मन पर वैसा ही होता है जैसे मक्खन पर चलते हुए तेज धार वाले चाकू का असर। हबीब तनवीर का यह नाटक इतना लोकप्रिय हुआ कि अनेक अभिनेताओं के बदल जाने के बावजूद भी उनकी प्रस्तुतियां आज भी हो रही हैं। ठाकुर राम, फिदाबाई और मदन लाल जैसे मजे हुए अभिनेताओं के बाद कबीर निर्मलाकर, श्यामा चैतराम, रामचंद्र, रंजना तिवारी, रामचरण और नगीन तनवीर ने इस नाटक की ताजगी को अब तक बनाए रखा है। पारसी रंगमंच के प्रति हबीब तनवीर का लगाव बचपन से ही रहा है। उनके कच्चे मन पर फारसी थिएटर के प्रभाव के बारे में पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, लेकिन उन्होंने अपने पूरी रंग जीवन में केवल एक ही पारसी नाटक का निर्देशन किया हुआ था, आगा हर्ष कश्मीरी का नाटक रुस्तम सोहराब। इस नाटक को उठाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है, भारतीय संस्कृति के नाटकों को मंचित करने की लुप्त प्राय परंपरा और लोक नाटकों की प्रचलित परंपरा के बीच पारसी रंगमंच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। पारसी रंगमंच विक्टोरियन रंगमंच का भारतीयकरण है। अति नाटकीय अभिनय पद्धति पर इंग्लैंड की पुराने रंगमंच की छाप देखी जा सकती है और दृश्यों को बदलने के लिए रंगीन पर्दों का प्रयोग भी उसी का अनुकरण है। नाटकों के आरंभ, मध्य और अंत में गाए जाने वाले गीत और अनेक स्थलों पर शास्त्रीय संगीत का अंदाज संस्कृत नाटक परंपरा की बोली विसरी पद्धति का नवीकरण नजर आता है, जबकि नाटक के बीच प्रहसनात्मक लघु कथानकों का प्रयोग उसे लोक नाटक परंपरा सीधे जोड़ता है। विशुद्ध रूप से जनाश्रय में पनपने वाला भारतीय नाट्य रूप धीरे धीरे लोकप्रियता के प्रलोभन का शिकार हो गया और उसे सस्ती लोकप्रियता के लिए कलात्मकता के साथ समझौता करना पड़ा। अतिशय भावुकता, चमक दमक, हल्की और फूढ़ मजाक, रंगमंच पर चमत्कार की तरह प्रस्तुत की जाने वाली युक्तियां पारसी नाटक के सफलता का मानदंड बन गई, लेकिन यह नाटक उस समय के पारसी नाटकों की उन बुराइयों से अछूता रहा। इस संबंध में हबीब तनवीर के शब्द, रुस्तम सोहराब आगा हर्ष के उन अच्छे नाटकों में से है जिसे वह पारसी थिएटर कंपनियों के मंच पर पेश करने में आखिर उम्र तक नाकामयाब रहे। रुस्तम सोहराब उन्होंने प्रौणता के अंतिम दिनों में लिखा था और एक बार पारसी थिएटर के व्यावसायिक आवश्यकताओं को भूल कर लिखा था। यही वजह थी कि यह नाटक लिखकर उन्होंने अपने दिल की प्यास तो बुझाई लेकिन पारसी थिएटर के किसी मालिक को इस मामले में अपना हम ख्याल बनाने में कामयाब न हो सके। इस बात पर गौर किया जाए तो फिर यह महसूस होता है कि जैसे कि हागा हश्र ने रुस्तम और सोहराब अपने ज़माने के लिए नहीं आइंदा ज़माने के लिए लिखा और इसीलिए यह नाटक पहले नहीं खेला जा सका बल्कि 1960 में पहली बार खेला गया और कामयाब हुआ। हबीब तनवीर की इस प्रस्तुति की सफलता का श्रेय कुल इस नाटक को आलेख को ही नहीं वरन इसके नए अनुभव को भी जाता है जो उन्होंने अपने प्रयोगों से प्राप्त किए थे। अपने समय के दर्शकों की कलात्मक तुष्टि का हबीब तनवीर ने पूरा ख्याल रखा और इसे खासा दिलचस्प बना दिया। इस प्रस्तुति के संबंध में उनकी उक्ति, रुस्तम सोहराब की प्रस्तुति से मैंने उस थिएटर की कमियों को तो दोहराया नहीं चाहता था लेकिन उस थिएटर की एक नई रोशनी में जरूर पेश करना चाहता था। इसीलिए वेशभूषा वगैरह के सिलसिले में हमने ऐतिहासिक खोज और पुरानी ईरानी तस्वीरों से फायदा उठाया और मामूली टाट को रंगवा कर कपड़े तैयार करवाए, घोड़ों और ऊँटों की जीन की चीज़ों और कबूतरों के पैजनों से जेवर बनवाए, मंच पर अभिनेताओं की गतियों और समूहों के सिलसिले में आधुनिक रंगमंच के उसूलों से काम लिया। जैसे संगीत की गति पर पर्दा उठता और गिरता है और अभिनेता दाखिल होता है और बाहर जाता है। मंच के ऊपर एक चबूतरा बनाया था जिसकी शक्ल तिकोनी थी। उस पर पर्दे उसी तरह आते जाते थे जिस तरह बाहर से थिएटर के पर्दे, यानी नीचे से ऊपर को लिपटते हुए। अलबत्ता इन पर जो दृश्य बनाए गए तो इनमें रंगों का चुनाव और मेल और रेखाओं का संयोजन और निर्धारण, ये चीज़ें आधुनिक चित्रकला के आधार पर थी। भले ही यह नाटक हबीब तमीर की उस मारों से लगता जिसकी उन्हें तलाश थी, लेकिन इस प्रदर्शन के जरिए उन्होंने अपने गंतव्य की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाया जो बहुत मजबूत था। रंगमंची परंपरा की ऐतिहासिकता के संबंध में उन्होंने एक पड़ाव पार कर लिया। दूसरी और शायद एक महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि इस नाटक का निर्देशन के जरिए हबीब तमीर ने पास रंगमंच के प्रति अपना वर रंग ऋण चुका दिया जो उन पर बचपन के जमाने में चढ़ा हुआ था। एक और रंग ऋण उन पर बर्तोल दृश्य का रहा है। यह ऋण मात्र रंगमंच के प्रति लगाव का ही नहीं बल्कि कलात्मक और बौद्धिक स्तर पर अधिक रहा है। उनके व्यक्तित्व के अविभाज्य तत्व सामाजिक प्रतिबद्धता को एक नई दृष्टि और रंगकर्म के प्रति उनके मन में बैठी पूर्व निष्ठा को बर्तोल दृष्टि की अवधारणाओं से और पुख्ता कर दिया। पंचमढ़ी में आयोजित एक कार्यशाला के दौरान उन्होंने 1962 में वरिष्ठ के नाटक गुड वुमेन ऑफ सजुआन का निर्देशन किया था। यह प्रदर्शन अंग्रेजी भाषा में था और इसका प्रयोजन भी कुछ दूसरा था, लेकिन उस कार्यशाला में इस नाटक पर काम करते हुए उन्होंने वरिष्ठ के इस नाटक की बहुत सारी खूबियां हाथ लगी जो उस नाटक की बुनावट का आंतरिक हिस्सा थी। उन्होंने इस कार्यशाला के दौरान वरिष्ठ के मुहावरे को प्रस्तुति के संदर्भ में गहराई से समझा। हबीब तमीर के लिए ही इस प्रस्तुति की उपलब्धि थी, लेकिन 15 वर्ष बाद हबीब तमीर ने इस नाटक का फिर प्रस्तुतिकरण किया। इस बीच अनेक प्रसंगों से गुजरने के बाद वे अपना खास मुहावरा तैयार कर चुके थे। अब तक की उनकी प्रस्तुतियों के मूल आलेख या तो लोक कथाओं और लोक विधाओं पर आधारित थे या फिर संस्कृत के नाटक। उनमें मूलतः पौराणिक कथानक थे और उनके आलेख की विशेषताएं भी अलग थी। अब वह अपने मुहावरे को अधिक समृद्ध करने की दृष्टि से उन नाटकों की ओर आकर्षित हुए जिससे वे पहले अधिक प्रभावित थे। इसी क्रम में उन्होंने ब्रिष्ट के इस नाटक का छत्तीसगढ़ी में रूपांतर किया और 1978 में शाजापुर की शांतिबाई को शीर्षक से प्रस्तुत किया। यह रूपांतर भी हबीब तनवीर की अपने मुहावरे की आँच में पक कर नई आवाज देने में समर्थ रहा। शांतिबाई की भूमिका में फिजाबाई ने एक बार फिर अपने अभिनय कौशल का चमत्कार दिखाया और गोविंद राम, मदन लाल ठाकुर राम, भुलवा राम और रामचंद्र सिन्हा थिएटर के मजीब कलाकारों ने पूरी तरह भारतीय परिवेश के नाटक के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह कि हबीब तनवीर ने ब्रिष्ट के चरित्रों, घटनाओं और गीतों को अपनी धरती की गंध रूप और रस से सराबोर कर दिया। ब्रिष्ट के गीतों का अनुवाद टेढ़ी खीर है, लेकिन हबीब तनवीर ने इसे अमरस सामधर बना दिया। भाषा की इस विशेषता ने अभिनेताओं की इतनी समतल जमीन दे दी जहाँ वे बेलौस अपने चरित्रों के अनुभव अनुरूप भावों की अदायगी कर सके। कुछ समीक्षकों और रंगकर्मियों ने यहाँ वहाँ कहा है कि हबीब तनवीर का मुहावरा खास तौर से हास्य व्यंग का है जिसमें छत्तीसगढ़ी कलाकार अपना सानी नहीं रखते। इस वाक का अंतिम अंश तो काफी हद तक सही हो सकता है, लेकिन यह कहा कि हबीब तनवीर के हास्य व्यंग के नाटक की बुलंदियों को छू गए हैं एकदम गलत होगा। हबीब तनवीर के मौलिक नाटकों में सबसे ज्यादा असरदार नाटक वे हैं जिनमें हल्के फुल्के मनोरंजन की कतई कोई गुंजाइश नहीं थी। अपने मौलिक नाटकों के लिए उन्होंने जिन संजीदा विषयों को चुना वे अपने कथा प्रस्तुतिकरण में इतने गंभीर है कि उसी मुद्रा के कारण वे अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। इन नाटकों में सबसे पहले हीरमा की बात, हीरमा की अमर कहानी की पहली प्रस्तुति उन्होंने 1985 में की थी। इससे कुछ समय पहले उस नाटक के पाठ और उस पर बातचीत के लिए श्री राम सेंटर में एक गोष्ठी आयोजित की गई थी। नाटक के पहले पाठ में लगा था कि इसका कथानक बस्तर के उन आदिवासी लोगों से संबंधित है जिसका परिचय बाहर की दुनिया के नहीं है। उनकी जीवन पद्धति, रीति रिवाज, न्याय और दंड व्यवस्था, सामाजिक एकजुटता आदि अनेक प्रसंग कुतूहल और जिज्ञासा का जन्म देने वाले हैं। वस्तुतः यह भारतीय आधुनिक सभ्यता से पूर्व का ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसका विवेचन भारतीय विकास की अंतर प्रक्रिया से गहरा संबंध रखता है और आज के भारतीय परिवेश का जीवंत नमूना भी है। स्पष्ट है कि यह अत्यंत जटिल कथा वस्तु थी जिसे हबीब तनवीर ने बस्तर के राजा प्रवीण चंद भंजदेव से संबंधित घटनाओं के इर्द गिर्द बुना था। इस नाटक का नायक हिरमा एक काल्पनिक चरित्र है। सतही तौर पर लगता है कि हबीब तनवीर ने हिरमा के सामंतवादी चरित्र को ऐसे नायक रूप में प्रस्तुत किया जिसकी मृत्यु के बाद आदिवासी लोगों में यह अंधविश्वास फैला हुआ है कि वही हिरमा अब पुनर्जन्म लेकर नारंगी वाले बाबा के रूप में अवतरित हुआ है। इस कथावस्तु का विवादास्पद पक्ष यह है कि कहीं हबीब तनवीर इस नाटक में सामंतवादी मनोवृत्ति और आदिवासियों के अंधविश्वास का समर्थन तो नहीं कर रहे हैं, कहीं भारतीय संविधान द्वारा संरक्षित प्रजातंत्रियों के मूल्यों की अवहेलना तो नहीं हो रही है। श्रीमती रीता सौंदर्य को दिए गए एक लंबे इंटरव्यू में हबीब तनवीर ने इसे स्पष्ट किया, नहीं, मैंने सामंतवाद का समर्थन नहीं किया, मेरा केंद्र बिंदु दूसरा है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि पुरातन आदिवासी समुदाय ने अपने समाज के लिए ही स्वयं ही एक तंत्र और व्यवस्था बना ली थी जो अपने आप में पूर्ण थी। उस व्यवस्था में उन्हें पूरी तरह काट कर दूर कर देना उन पर ऐसी व्यवस्था थोप देना जो उनकी समझ के बाहर की चीज़ है न केवल गलत है बल्कि बौद्धिक दृष्टि से भी अस्वीकार है। इससे उसके मन में अनौचित्य का भाव जागता है। इसका परिणाम उनका अधःपतन और उनके समाज का विघटन हो सकता है। इसीलिए अगर इन आदिवासियों की बुद्धिमानी को स्वीकार करके उन्हें अपने आप विकास करने का अवसर दिया जाए तो वे विकास के लिए ऐसे तरीके खोज सकते हैं जो उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो। उनकी यह पद्धति शायद हमारे लिए भी विकास की दृष्टि से पथ प्रदर्शक बन जाए। इसलिए मैं उनका समर्थन किए बगैर यथास्थिति को दिखला रहा हूँ जो कि सामंतवादी ढांचे में बुनी हुई है। वास्तव में मैं यह सुझाव दे रहा हूँ कि हिरिमा नाम का व्यक्ति अपने समाज को जिस तरह से जानता था उसने अपनी प्रजा को निर्णय लेने के अनेक अधिकार दे रखे थे। हबीब तनवीर का मंतव्य जो भी रहा हो, उनके इस नाटक की प्रस्तुति से जिस विवाद ने जन्म लिया था वह खत्म नहीं हो सका। इस नाटक का लेख बड़ा चुस्त था, समाज बहुत तीखी हास्य और व्यंग की कोई गुंजाइश नहीं। संगीत और नृत्य भी कथा का अनिवार्य, कोरस के गीत विचारोत्तेजक, नाटक की गति में भरपूर प्रवाह। हिरिमा की भूमिका में भुलवा राम का अभिनय बड़ा प्रभावशाली और जीवंत। कलेक्टर कलहन के चरित्र की भूमिका में दीपक तिवारी और बाद में रामचंद्रन के सटीक और सहज क्षेत्रीय विधायक की भूमिका में हबीब तनवीर स्वयं थे। अभिनेताओं का चयन में अत्यंत सावधानी बरती गई थी। इतना सब कुछ होते हुए भी एक जानदार प्रस्तुति होने के बावजूद नाटक को कथा प्रसंग के विवाद ने घेर लिया, जिसके अत्यंत प्रिय और निकटतम लोगों में सफदर हाशमी भी थे। उन्होंने भी इस नाटक की तीखी आलोचना की। सफदर की समीक्षा के बारे में हबीब तनवीर ने कहा, हिरिमा की अमर कहानी में उसने मुझसे कई दिनों तक बड़ी लंबी लंबी बातें की, रिहर्सल वगैरह देखने के बाद। फिर 3-4 शो लगातार देखे और बात करता रहा। उसके बाद जाकर लिखा, और लिखा तो क्रिटिकल लिखा, सब तारीफ नहीं लिखी, वह भी लिखा जो मेरा अपना डायलेमा था, जिसका भी जिक्र किया। एक सबसे अच्छा क्रिटिसिज्म हिरिमा की अमर कहानी का सफदर ही का था। वस्तुतः यह नाटक दर्शकों के समक्ष बड़ा प्रश्न रखता है। हमारे देश के संदर्भ में जहाँ आदिवासी ग्रामीण जन शहरों के मजदूर और साथ ही अत्यंत संपन्न लोग एक साथ रहते हैं, विकास का अर्थ क्या ही सबके लिए एक सा हो सकता है? विविध वर्गों के समुदायों अंचलों के लिए या संपूर्ण देश के लिए विकास की राह क्या एक जैसी हो सकती है? क्या इस सोच में कोई औचित्य है? ये और ऐसे अनेक अनेक प्रश्नों का समाधान इस नाटक में नहीं है, लेकिन ये प्रश्न इतने बड़े और साकार रूप में सामने आते हैं कि दर्शक बहुत कुछ सोचने के लिए बाध्य हो जाता है। सन 1985 में फोर्ट फाउंडेशन की एक परियोजना के अंतर्गत इस नाटक को तैयार किया गया था। उस क्षेत्र के जनजीवन को प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने बस्तर के सुदूर अंचलों में रहने वाले आदिवासी लोगों के जीवन पद्धति और रीति रिवाजों का गहन अध्ययन किया था। मोफाल, झीरम तराई, नारायणपुर, रिमावंद, कांकेर आदि क्षेत्रों के आदिवासी भी इस नाटक की पहली प्रस्तुति में शामिल किए गए थे, जो 13 अक्टूबर सन 1985 को बिलासपुर के रेलवे स्टेडियम प्रदर्शित किया गया था। तब से अब तक इस नाटक को भी अनेक अनेक प्रस्तुतियां हो चुकी है। नाटक भी हबीब तनवीर के निजी मुहावरे से रचा बचा, फिर भी इसकी इबारत इतनी सरल नहीं कि प्रस्तुतियां विफल नहीं थी। नाटक का अब गठन बेहद पसंद किया गया, किंतु प्रयोजन कहीं उदला पड़ गया था। सफल मुहावरे में किया गया नाटक विवादास्पद हो सकता है। हिरिमा की अमर कहानी इसका विचित्र उदाहरण है। यह मानना कतई गलत होगा कि इस नाटक के कथ को गंभीरता से के कारण ऐसा हुआ, क्योंकि हबीब तनवीर की अब तक की नाटक प्रस्तुतियों में देख रहे हैं नयन संभवतः अकेले नाटक को चुजाने पहचाने से स्थितियों शुरू होकर अनेक नाटकीय मोड़ों से गुजरता हुआ ऐसे मुकाम पर पहुंचता है जो मनुष्य की दैहिक सत्ता, उसके उत्कर्ष और अपकर्ष की व्यथा कथा कहता हुआ अंततः मनुष्य की रूहानी अनुगूज तक पहुंचता है। युद्ध शोषण और यश की लिप्सा को पूरी तरह निरर्थक सिद्ध करता हुआ विशुद्ध मानवीय संवेदना और निष्काम कर्म भावना की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करता है। मनुष्य मात्र की सेवा में ही जीवन की सार्थकता का अनुभव करने वाला यह नाटक संभवतः हबीब तनवीर के लेखक के सृजन पक्ष का श्रेष्ठतम उदाहरण है। हबीब तनवीर के मुहावरे में पूरी तरह डूबा हुआ यह नाटक दर्शकों के मन प्राण पर दूर तक और देर तक असर बनाए रखता है। देख रहे हैं नैन, मूलतः स्टीफन च्वांग द्वारा लिखित विराट की कहानी द आइज ऑफ एन अनडाइंग ब्रदर पर आधारित है, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद सन 1922 में प्रकाशित हुई थी। हरमैन हेस की कहानी सिद्धार्थ दिवसीय वर्ष प्रकाशित प्रकाश में आई। सिद्धार्थ का जिक्र करते हुए स्टीफन ज्वांग ने हेस को लिखा कि एकमात्र संयोग है कि युद्ध की विविष्का और सामान्य जन के त्रास के संबंध में दोनों एक ही वैचारिक धरातल पकड़े हैं। वे दोनों एक ही समय निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भारतीय वैचारिक सिद्धांत और दर्शन ही मनुष्य को यौधिक त्रासदी से बचाने का एकमात्र विकल्प देते हैं। वे युद्ध को विनाश का सौदर मानते हैं। उन दोनों की कहानी आशाजनक रूप से बाइबल की कथाओं और भगवद्गीता के कर्मयोग के सिद्धांत से अनुप्रेरित है। स्टीफन ज्वांग की यह कहानी उन्हें जर्मन महिला एलिजाबेथ गोबा ने सन 1954 में सुनाई थी, जो 50 वर्ष तक अपने दिल दिमाग में गहरे तक धंसी हुई थी। इस कथा का सार्थक ज्यों का त्यों बनाए रखकर भी उन्होंने अपने नाटक में अनेक परिवर्तन किए। कुछ नए चरित्रों घटनाओं के जरिए उन्होंने केवल आलेख को नाटकीयता प्रदान किया, वरन स्टीफन ज्वांग के मूल मंतव्य को अपने मंतव्य के समानांतर कर दिया। देख रहे हैं नैन की कथा का सारा सार संक्षेप इस प्रकार है। विराट चंद्रपुर का वफादार नागरिक राजा विजयदेव के राज को कठिन समय में दुश्मनों के हमले से बचा लेता है, लेकिन अनजाने में इस युद्ध में अपने भाई की हत्या कर देता है। इस मृत भाई की आंखें सारी जिंदगी विराट का पीछा करती हैं। राजा विजयदेव सिंह उसे सेनापति की पदवी देना चाहता है, लेकिन विराट ठान लेता है कि अब कभी तलवार को हाथ नहीं लगाएगा। चुनाचे राजा उसे देश का प्रधान न्यायाधीश बना देता है, लेकिन 6 साल बाद वह एक कातिल को 11 साल की सजा देते वक्त वो देखता है कि कातिल की आंखें उसके भाई ही की आंखों की तरह विराट पर कत्ल का इल्जाम लगा रही हैं। वो राजा की विनती करता है कि हर काम का परिणाम बुरा निकलता है, चुनाचे उसे इजाजत दी जाए कि वो आइंदा कोई काम न करे। उसे इजाजत तो मिल जाती है, लेकिन फिर 6 साल बाद जब उसका बेटा भगवती अपने एक दास को मारकर लहूलुहान कर देता है, तो विराट फिर देखता है कि उस मजलूम दास से उस भाई की आंखें बदस्तूर शिकायत कर रही हैं। आखिर वो दुनिया तज कर साधु बन जाता है। यहाँ पे 6 साल की तपस्या के बाद एक औरत की आंखों में वो अपने भाई की घूरती आंखों को महसूस करता है। उस औरत का पति जो घर में एक ही कमाने वाला था, विराट के शोहरत बनकर साधु बन जाता है और जंगल सिधारता है और उसके नन्हे नन्हे 3 बच्चे एक के बाद एक भूखे मर जाते हैं। वो औरत विराट को ही कातिल मानती है। ये सुनकर विराट तड़प उठता है और राजा से अदना काम मांगने के लिए दरबार पहुंच जाता है। उसका मानना है कि सेवा से ही मुक्ति है, बाकी सब कामों का अंजाम दूसरों के लिए बुरा होता है। इस बात पर राजा तैश में आकर उसे हुक्म देता है कि वह चंडालों का काम करे। विराट खुशी खुशी शमशान में चिताएं जलाने में लग जाता है। शहर में प्लेग फैल जाती है और सारे साथ जनता राजा के खिलाफ बगावत कर देती है और विजय देव को मार देती है। विराट जो इस वक्त प्लेग का शिकार हो चुका है, राजा की लाश शमशान भूमि में ले जाते वक्त खुद ढेर हो जाता है। अभी तनवीर के इस नाटक की कथा वस्तु में जिन सूत्रों को पिराया गया वह इस श्रेष्ठ नाटक के रूप में प्रदर्शित होते हैं। इस अत्यंत संश्लिष्ट और जटिल कथा को सहज रूप से प्रस्तुत करने के लिए भी तनवीर ने अपने परिचित मुहावरे का प्रयोग करते हुए कोरस के गीत लिखे, किंतु ये कोरस भी उनके शायराना अंदाज से अनुप्रेरित थे। इस नाटक का कोरस संगीत भी रंजक तत्वों से कहीं अधिक बौद्धिक धरातल पर टिके हुए। इस नाटक का कथा प्रधान गीत है, देख रहे हैं नयन बांवरे, देख रहे हैं नयन, छीन लिया दो नयनों ने सब जीवन का सुख चैन। कौन हो तुम, क्यों देख रहे हो मुझको, तुमको काम, दो नयनों ने उलट दिया होठों तक आया जा। इस नाटक में दो नयन, विराट के मृत भाई के दो नयन मात्र नरक का दार्शनिक स्तर तक जाते हैं। ये दो नयन हम सबके कार्य व्यापार को निरंतर देख रहे हैं। विराट इन दो आंखों की शक्ति से परिचित और पराजित है, लेकिन ये दो नयन तो हम सबका पीछा कर रहे हैं। ऐश्वर्य शक्ति या जादुई खुदाई तस्वुर का प्रतीक इस देश काल की सीमाओं से परे विशुद्ध मानवतावादी धरातल पर प्रदर्शित करता है। यह नाटक एक दृष्टि से नजरअंदाज चोर से अधिक सार्वकालिक, सार्वदेशिक और सार्वजनीन है। अत्यंत दिलचस्प बात यह है कि इसके बावजूद हबीब तनवीर का यह नाटक उनकी मूल अवधारणाओं से परे नहीं है। कार्ल मार्क्स से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांतों की अनुभूज इसमें साफ सुनाई देती है। इतना अवश्य कि नाटक का अंत एक अनुत्तरित प्रश्न पर होता है जो चिरंतन है, शाश्वत है, जिसकी खोज में अनंत काल से आज तक दार्शनिक लगे हुए हैं और किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच नहीं सके हैं। यह चिरंतरता ही मानव सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता भी है और यही उसकी विडंबना भी है। विडंबना हबीब तनवीर की भी है, लेकिन इसके बावजूद वे अपने मानवतावादी मन के विचारों को पूरी तुर्शी के साथ इस नाटक में व्यक्त करते हैं। देख रहे हैं नयन गीतों की पंक्तियां इस बात के साक्षी हैं। दस घर गिरा के मलबे से एक अपना महल बनाया, दस को भूखा मारा, दस का भोज अकेले खाया, औरों को बेचैन किया और खुद भी रहा बेचैन, देख रहे हैं नयन बावरे, देख रहे हैं नयन। यह गीता भी है, कुरान भी है, बाइबिल भी है और मार्क्स भी। सबसे ज्यादा मुखरित होता है मार्क्स, लेकिन यह नाटक मार्क्सवादी सिद्धांतों को परिपुष्टि करने वाला नहीं। सुखद आश्चर्य कि यह नाटक उन सिद्धांतों का खंडन भी नहीं करता। विश्व के सारे धर्म जिस वैराग्य को जीवन का अंतिम सोपान मानते हैं, हबीब तनवीर पूरी निष्ठा के साथ उसे स्वीकारते भी और नकारते भी हैं। इसी नाटक के कोरस अंश में एक गीत है, अब रहिए बैठे के जंगल में, सब कुछ तज कर बैराग लिए, औरों को सुख पहुंचाने में भी जुल्म का पहलू शामिल है, दुनिया के नाम कमाने में भी जुल्म का पहलू शामिल है, खुदा दानिश मर जाने में भी जुल्म का पहलू शामिल है, आखिर कब तक ये हाय हाय एक अभिलाषा की आग लिए, अब रहिए बैठे के जंगल में, सब कुछ तज कर बैराग लिए। लेकिन यह बैराग भी विराट के जीवन का अंतिम सच नहीं। विराट के माध्यम से तनवीर ने उसकी निस्वार्थता और व्यर्थता का बोध कराते हैं। विराट फिर वापस आता है और अपने समाज में अपने लोगों के बीच निस्वार्थ सेवा करने के इरादे से, और वह यह स्थल आश्चर्यजनक रूप से द्वंद्वात्मक भक्तिवाद और कर्मियों को एक साथ जोड़ लेता है। आलय की इस विशिष्टता को प्रस्तुति में भी कारगर तरीके से पेश किया गया। इस जटिल आलय को तैयार करते समय हबीब तनवीर ने अपने विशुद्ध साहित्यिक मुहावरे को समाधान में ढाला। सरलतम शब्दावली में गुणतम बातें कर देने में हबीब तनवीर कितने माहिर है, यह बात उनके इस नाटक में उजागर होती है। लेकिन पूर्वाभ्यास के दौरान प्रस्तुति के गठन के कारण इसमें काट छांट करनी पड़ी। यह काम नाटककार हबीब तनवीर हबीब के लिए निर्देशक हबीब गैसी से बेहद चुनौती भरा था। शाहिद अनवर को दिए गए एक इंटरव्यू में इस संबंध में हबीब तनवीर ने कहा, देख रहे हैं नैन, मैंने बड़े जोरदार संवाद लिखे थे जो पढ़ते हुए बहुत आकर्षक लगते थे, लेकिन तैयारी के दौरान पता चला कि वे गैर जरूरी थे और मुझे उन्हें बेदर्दी से काटना पड़ा। इस बेदर्दी का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि आलेख में अच्छी कसावट आ गई, किंतु प्रस्तुति में दो बड़ी बाधाएं और थीं। पहली यह कि उनके अधिकांश संवाद हिंदी में थे और कथाक्रम ऐसा कि जिसमें आंशु अभिनय की कोई गुंजाइश नहीं थी। नया थिएटर के कलाकारों की सबसे बड़ी विशेषता इस नाटक में उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई। लेकिन गोविंद राम, भुलवा राम, रामचंद्र, दीपक तिवारी, रामचरण, बिजलाल, उदय राम, चौहत राम, देवीलाल, पूनम, श्यामन, नगीन आदि ने 3 महीने के कठिन पूर्वाभ्यास से इस चुनौती का बड़ी खूबसूरती सामना किया। अभिनय की जो कसावट मुद्रा एक्टर जैसे जटिल नाटक की प्रस्तुति में देखने को मिली थी वह और संस्कारित हो गई। इस नाटक की प्रस्तुति से यह भी जाहिर हो गया कि नया थिएटर के कलाकार बेहद संजीदा नाटकों के बहुआयामी चरित्रों के अभिनय में भी पारंगत हो चुके हैं। इस प्रस्तुति की एक और विशेषता थी इसका संगीत और नृत्य। हबीब तनवीर ने इन गीतों की भाषा और उसका गंभीर एक विशेष प्रकार के लय, ताल और भंगिमाओं की अपेक्षा करता था। छत्तीसगढ़ के लोकल संगीत और नृत्य में हबीब तनवीर के वह सामर्थ्य नजर नहीं आया जो इस नाटक में सबसे बड़ी मांग थी। इसके लिए उन्होंने बस्तर के आदिवासी क्षेत्र में प्रचलित धुनों और तालों का आश्रय ग्रहण किया। भारत के अधिकांश भूभाग की यह बस्तर में भी नवरात्रि के दिनों में काली पूजा या देवी पूजा का उत्सव मनाया जाता है। वहाँ में नवरात्रि के पहले दिन देवी की स्थापना होती है और नए अन्न को अंकुरित करने के लिए मिट्टी में बोया जाता है। आमतौर पर इसे जवारा कहा जाता है। दूसरे प्रदेशों में जवारा में केवल एक ही अन्न होता है, सामान्य तौर पर जौ या गेहूँ। बस्तर में 7 अन्न होते हैं जिनमें गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा, चना और चावल होता है। झारखंड के रणचंडी मंदिर में यह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और नवरात्रि के अंतिम दिन यानी काली या दुर्गा के विसर्जन के अवसर पर जो नृत्य होता है वह जीवंत, अत्यंत तीव्र गति एवं ताल से युक्त होता है तथा उसकी धुन भी बहुत अधिक ओजमय होती है। इस नृत्य में युद्ध का प्रमाद भी झलकता है और माँ काली के प्रति अनन्य निष्ठा भी, जो आध्यात्मिक चेतना के संभाग भी है। देख रहे हैं नयन का यही तो केंद्रीय विषय था। हबीब तनवीर ने आदिवासियों की इस नृत्यात्मक गतियों का इस नाटक में इतना खूबसूरत प्रयोग किया कि प्रस्तुति की शक्ति कई गुना बढ़ गई। शायद नया थिएटर के पारंपरिक कलाकार इस तरह के दोनों लयों और तालों पर ऐसा उत्तेजक नृत्य नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने बस्तर के रीमावंड गांव को आदिवासियों को इस प्रकार के नृत्यों के लिए शामिल किया था जो परंपरागत थे। उनके नृत्य भंगिमाओं, मुद्राओं, गतियों, धुनों और तालों ने इस प्रस्तुति को अपेक्षित आयाम दिया। आलेख और प्रस्तुति के सुनकर संगम ने भले ही सामान्य जन को इतना आनंदित कर दिया हो जितना चरणदास चौर या बहादुर कलारी ने, लेकिन साहित्यिक और कलात्मक रुचि के दर्शकों के लिए नाटक सचमुच हबीब तनवीर की श्रेष्ठतम प्रस्तुतियों में से एक रहा है। उनकी इतनी सब विशेषताएं होते हुए भी देख रहे हैं कि पुनर्प्रस्तुतियां अपेक्षाकृत कम हुई। इसका कारण यह भी नहीं कि इस नाटक के मांग में कोई अंतर पड़ा, बल्कि यह भी था कि इस नाटक की प्रस्तुति की जो सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी पूरी तरह रक्षा नहीं हो सकी। इस नाटक में हबीब तनवीर ने पहली बार बस्तर के आदिवासी क्षेत्र को दुसाध नृत्य गतियों, लय, स्वरों एवं ताल का प्रयोग किया था जो इसके कथानक के गंभीर को बनाए रखते हुए उसे रंजक बनाने में भी योग देते थे। ये कलाकार नया थिएटर के रंगमंडली के नियमित सदस्य नहीं थे, इसीलिए समय के अंतराल पर पुनर्प्रस्तुतियों में भाग लेना इनके लिए दुष्कर था। जब हबीब तनवीर ने आदिवासी कलाकारों के विकल्प के रूप में अपने रंगमंडल के कलाकारों को इस भूमिका में उतारा तो उसका प्रभाव क्षीण हो गया। आदिवासी कलाकारों की उत्कृष्टता जो अभिनय नहीं बल्कि उनकी अत्यंत सहज और स्वाभाविक मुद्रा है और उसके जीवन का तरंग है, छत्तीसगढ़ी कलाकारों द्वारा प्रस्तुत नहीं की जा सकती। नया थिएटर के परंपरागत कलाकार वैसे ही शक्ति और त्वरा के साथ प्रस्तुत नहीं कर सकते जो पिछली प्रस्तुतियों में संभव हुआ था। अतः इस नाटक के बाद में होने वाली प्रस्तुतियों का प्रभाव धीरे धीरे क्षीण होता चला गया। फिर भी यह निर्विवाद है कि देख रहे हैं नयन का आस्वाद हबीब तनवीर के समस्त रंग से अलग का है। इस प्रस्तुति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हबीब तनवीर के सामान्य सर्वमान्य और बहुप्रशंसित आलातकारी मुहावरे के इस नाटक में गंभीर का नया आयाम दिया। इसी क्रम में हबीब तनवीर का एक और नाटक है एक औरत हिपेशिया भी थी। अलेक्जेंड्रिया की ऐतिहासिक कथा ईशा पूर्व की एक ऐसा विद्रोही चरित्र जिसने राजनीतिक शोषण और दमन चक्र के खिलाफ आवाज उठाई और निरीह मनुष्यों को दास बनाने की प्रथा के विरुद्ध जबरदस्त जन आंदोलन छेड़ दिया। शासक वर्ग ने हिपेशिया की आवाज को कुचलने के लिए तरह तरह की यातना दी लेकिन उसे परास्त नहीं कर सके। अंत में उसे नेस्तनाबूद करने के शासक वर्ग ने हिंसा, दमन और क्रूरता का ऐसा घिनौना ताना बना जो रोकटे खड़े कर देने की घटना है। नाटक में घटना चक्र थी जिस गुमता है कि इस नाटक की त्वरा हबीब तनवीर के अन्य सभी नाटकों से अलग होती है। अलखनंदन को दिए गए इंटरव्यू में इस नाटक के बारे में हबीब तनवीर ने कहा, हिपेशिया ऐसा ही क्लासिकल सब्जेक्ट है, शास्त्रीय है। इस मायने में मामले में कि प्राचीन काल की कहानी बिफोर क्राइस्ट तो यह विषय वहाँ का है, मिस्र से ताल्लुक रखता है, अलेक्जेंड्रिया से। तो इसके नाते वहाँ का आदमी का जहन पहुँचते हैं तो मैंने बहुत सी क्लासिकल उर्दू भी इस्तेमाल की है जिसमें मेरा मुहारा भी है और इसमें आसानी से कलम मेरा चलता भी है। ये पेशिया मिश्र का ऐतिहासिक कथा का नाटक प्रस्तुतिकरण था, रूपांतर नहीं। इस मायने में भी ससारे के चरित्र घटनाएं और स्थितियां तथा वातावरण उस जमाने की जिंदा तस्वीर की तरह सामने आती हैं जो ईसा पूर्व के काल की हैं। इस दृष्टि से नाटक में नयापान का यह था कि उसका खूबसूरत तरीके से दस्तावेजी रूप डॉक्यूमेंटेशन सामने आया, लेकिन श्रावण दर्शकों के लिए चरित्रों का आचार व्यवहार और खासतौर से उसकी जबान परायपन का बोध देती थी। सामान्य दर्शक इस क्लासिकल जुबान की तादाद में स्थापित नहीं कर पाए। उर्दू रंगमंच का देता और समीक्षक अनीस आजमी ने अपने एक लेख में हबीब तनवीर के इस नाटक की जुबान के बारे में लिखा। जनरल नाट्य मंच की दावत पर एक बार फिर अपना लिखा हुआ ड्रामा हिपेशिया 1998 में स्टेज किया। हिपेशिया का जिक्र आया तो एक अहम बात भी याद आई, वो ये कि अब से पहले हबीब साहब के नाटकों की जुबान जिस कदर सादा और आम अफवाह मुगा करती थी, हिपेशिया में वो इस कदर मुश्किल और शकील हो गई कि नाजरे नाटक देखने के साथ अपने सिरों को खुजला खुजला कर मतलब समझने की कोशिश करने लग गए। हबीब तनवीर का मुहावरा इस नाटक में इतना पूरा असर साबित नहीं हो सका, सो उनकी कलम की सबसे बड़ी खसूसियत थी। भले प्रस्तुति पर उनके अंदाज की पूरी मुहर थी, लेकिन असर से बेखबर। अगर हबीब तनवीर के इस नाटक कभी भारतीय रूपांतर पेश किया होता तो शायद ये दिक्कत सामने ना आती, लेकिन तब हिपेशिया कहानी की प्रामाणिकता पर आँच आ सकती थी। शायद हबीब तनवीर का ज्यादा मकसद उसकी प्रामाणिकता की रक्षा करना होगा, इसलिए उन्होंने यह जोखिम बोला। दिलचस्प बात यह है कि इसमें पहले हबीब तनवीर विश्व के अनेक नाटकों का भारतीय रूपांतरण कर चुके थे, जिन्हें अपने मुहावरे में डालकर उन्होंने जबरदस्त सफलता प्राप्त की थी। मलियर के बोर्जू का जेंटलमैन मैन के रूपांतर लाला शौरत राय और ब्रेस्ट के गुड पर्सन ऑफ द सुजवान के रूपांतर शाहजहाँपुर की शांति बाई का जिक्र पहले किया जा चुका है। इसी क्रम की एक शुरुआत करी है शेक्सपियर प्रसिद्ध नाटक मिड समर नाइट्स ड्रीम का रूपांतर कामदेव का अपना वसंत ऋतु का सपना। इस नाटक की पहली प्रस्तुति सन 1994 हुई थी। इस नाटक के चरित्रों के नाम और कार्य व्यापार भी शेक्सपियर के मौलिक नाटक के अनुरूप ही थे। शेक्सपियर के काव्य तत्व को भरपूर रचा करते हुए हबीब तनवीर ने पूरी तरह से इसे अपने मुहावरे में रख दिया। मिथुलेश श्रीवास्तव को दिए गए एक इंटरव्यू में इस नाटक प्रस्तुति की अंतर्कथा उन्होंने इस शब्दों में व्यक्त की, इस नाटक को तैयार करने की सचमुच एक दिलचस्प कहानी है। इंग्लैंड में एक इंग्लिश थिएटर कंपनी थी जो चाहती थी कि हम उसके साथ मिलकर काम करें। उन्होंने हमारे नाटक देखे थे, वह चाहते थे कि कोई ऐसा नाटक बनाए जिसे लंदन के 20 स्कूलों में या भारत के 20 स्कूलों में खेला जाता। उनका कहना यह था कि गैर ब्रितानी मूल के बच्चों में सांस्कृतिक दुख या पलायन का भाव है। वे अंग्रेजी फराटे से बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा की जानकारी के बावजूद ब्रिटेन की संस्कृति से अनजान है। ब्रिटेन में होने वाले संगीत कार्यक्रम में वे नहीं आते, फ्रांसीसी रंगमंच से नहीं जुड़ते। यही नहीं, वे अपने वतन की मूल संस्कृति से भी परिचित हैं। उनके जहन में परायपन का गहरा भाव है। इंग्लिश थिएटर कंपनी चाहती थी कि भारतीय मूल के बच्चों को रंगमंच के माध्यम से दोनों देशों की संस्कृतियों से परिचित कराया जाए। उनका मानना था कि उस देश के लिए सबसे कारगर शेक्सपियर का साहित्य है। शेक्सपियर की सभी ट्रेजिडी मैंने पढ़ डाली, लेकिन वहाँ मुझे सांस्कृतिक संगत वाली कोई ट्रेजिडी दिखाई नहीं दी। मुझ पर कोई बंधन नहीं था। शेक्सपियर के पूरे साहित्य में कहीं कोई अनशन लेने की मुझे आज़ादी थी, लेकिन मेरे सामने एक सवाल यह भी था कि अनगढ़ और अनपढ़ लोगों के साथ शेक्सपियर का नाटक कैसे हो सकेगा। अंततः मैंने मिड समर नाइट्स ड्रीम को पढ़ा। नाटक मुश्किल जरूर था, लेकिन लगा कि मेरे कलाकारों के साथ खप जाएगा क्योंकि इसमें शादी के दृश्य थे। लेकिन इस नाटक में शादी ब्याह या उत्सव के दृश्य ही क्या उन्हें भारतीय परिवेश में जोड़ने में सफलता हो सकते हैं। खासतौर पर शेक्सपियर के नाटकों में जो ब्रिटिश संस्कृति को अपने नाटकों में प्रादेशिक रूप में सामने रखते, इस नाटक के चरित्रों को भारतीय परिवेश देने में उन्होंने इसी इंटरव्यू में हबीब तनवीर ने कहा, इसमें दो तरह के लोग हैं। एक किस्म के लोग वे हैं जो जंगलों में रहते हैं और दूसरे किस्म के लोग दरबारी हैं। मैंने तय किया कि दरबारी लोगों की भाषा अंग्रेजी होगी और जंगलों के लोगों की भाषा हिंदी। उपनिवेश के ज़माने में अंग्रेजों में भारतीय लोगों और उनकी संस्कृति के प्रति घृणा का भाव था। शेक्सपियर के पात्रों में भी घृणा है। मेरी तैयारी चलने लगी, लेकिन तभी इंग्लिश थिएटर कंपनी के कारणों से बंद हो गई। मैं अधर में लटक गया क्योंकि नाटक पर काफ़ी काम हो चुका था, उसे छोड़ा नहीं जा सकता था। नाटक मैंने तैयार किया और उसकी पहली प्रस्तुति ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी के लिए की गई। इस तरह इस नाटक को प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी हुई। अंग्रेजी के संवादों को हिंदी में और हिंदी के संवादों को छत्तीसगढ़ी में तब्दील कर दिया गया। नाटक का आलेख रोचक हो गया, लेकिन शेक्सपियर की काव्यात्मकता को बरकरार रखने के लिए हबीब तनवीर ने क्या किया, इससे भी बड़ा प्रश्न है कि शेक्सपियर के इस नाटक के वातावरण को भारतीय रंग कैसे दिया। हबीब तनवीर की उक्ति, मुझे शेक्सपियर की कॉमेडी को हिंदी में लाने में कोई बड़ी मुश्किल नहीं हुई। हिंदी उर्दू और अरबी जुबान के छंदों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। शेक्सपियर के पद को हिंदी पद में, छंदों मुक्त में और गद्य को गद्य में उतार लिया। काफ़ी पहले मैं मुशायरे में ऊँची आवाज़ में शायरी गाया करता था, उन दोनों का भी मैंने इस्तेमाल किया। नाटक में फूलों के नाम मैंने भारतीय फूलों के नाम रखे, जानवरों के कीड़ों के नाम भी भारतीय बनाए, जैसे शेर गिलहरी आदि। ग्रीक देवताओं की जगह मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश कर दिए, लेकिन शेक्सपियर के पात्रों के नाम नहीं बदले। कामदेव का अपना कामदेव का सपना, बसंत अपना बसंत ऋतु का सपना, चरित्रों के विदेशी नामों के बावजूद पूरी तरह भारतीय नाटक हो गया। इसमें दरबारी संभ्रांत लोगों के चरित्रों के वामिक अब्बासी और रूमा घोषणा क्रमश थीसियस और टाइटानिया की भूमिकाएं की। शेष सारे पात्र नए थिएटर के लोग थे, लेकिन उनके संवादों का लहजा बहुत शुद्ध और चारित्रिक अनुकूल था। शेक्सपियर जिस तरह आवीर्तन के मुहारे में ढलकर पूरी तरह भारतीय परिवेश में रंग गया, वह सचमुच दिलचस्प है। लेकिन इस मुहावरे की इबारत बड़ी विचित्र है, किन्हीं बने बनाए नियमों और सिद्धांतों का उन्होंने अनुपालन नहीं किया, बल्कि उन्हें बार बार तोड़ा और नई नाट्य युक्तियों के प्रयोग से बार बार जोड़ा है। यह जोड़ और तोड़ उनके रंगकर्म की प्रयोग धर्मिकता की ऐसी यात्रा है जिससे गुजरे बगैर नया सृजन संभव नहीं हो सकता। उन्होंने अपने मुहावरों के लिए किसी नाट्य व्याकरण की शरण लेने के बजाय उसके नए सिरे से पड़ताल की। जो कुछ सार्थक लगा उसे अपनाया और जो निरर्थक था उसे हवा में उड़ा दिया। उनके रंगकर्म के समकालीनता का सबसे बड़ा रहस्य यही है। भारतीय रंगमंच के इस नए मुहावरे के संबंध में डॉक्टर स्वर्गीय डॉक्टर सुरेश अवस्थी ने अपने एक लेख में विचार प्रस्तुत किए। रंगमंच के इस नए मुहावरे और नए प्रदर्शन शैली के मूल व्यवहार और नियम धीरे धीरे स्थिर होते जा रहे हैं और उनका एक सैद्धांतिक पक्ष विकसित हो रहा है। मुझ जैसे नाट्य अध्येता के लिए प्रीतिकर अनुभव है कि इन तत्वों और सिद्धांतों में हम पारंपरिक रंगमंच और शास्त्र समस्त स्थापनाओं के समकालीन धारणाएं पाते हैं। दोनों का ही नवीकरण और नई अर्थवत्ता नए मुहावरे के विशिष्ट अंगों में नाट्य लेखन का सृजनात्मक निरूपण, रंगकर्म निर्देशक की नई सशक्त भूमिका, अभिनेता का प्रशिक्षण और इसका सृजनात्मक योगदान और प्रदर्शन और लेखी स्वायत्तता इन्हीं सैद्धांतिक अंगों से संबंधित मूलधर्मी रंगमंच के दूसरे गौण तत्व हैं, जिनके सारे नाट्य लेख अपनी पूरी अर्थध्वनियों के साथ उजागर होता और एक अत्यंत सारवान और नाट्यगर्भित प्रदर्शन आलेख को जन्म देता है। हबीब तनवीर का मुहावरा देखने सुनने में जितना सीधा और सरल लगता है उतना ही ध्रुव है। उसकी सही समझ के लिए इस इबारत को समझना बेहद जरूरी है जिसमें यह मुहावरा गढ़ा गया है।